प्रिय श्रोता नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यूहन्ना हैं। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हम कलीसियाओं के बारे देख रहे हैं। आइए आप मेरे साथ पढ़िए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, पिरगमोन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है। वह यह कहता है, ध्यान दीजिए, पिरगमोन की कलीसिया के दूत को। यह पत्र भी अन्य पत्रों के समान कलीसिया के दूत अर्थात संदेश वाहक को लिखा गया है, अर्थात हम कह सकते हैं कि कलीसिया के पास्टर को। तब वह आगे कहता है, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, अर्थात परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन में मनुष्य के पाप और उसकी आवश्यकताओं का समाधान है। पिरगमोन की कलीसिया की समस्या थी झूठा धर्म। उस नगर में धर्म पर अधिक ध्यान दिया जाता था और धर्म परमेश्वर के वचन से ही है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय के 13 पद में लिखा है, मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। कहता है कि तू वहां रहता है। प्रभु यीशु इस कलीसिया को 3 बातों के लिए सराहता है। वह जानता था कि ये विश्वासी एक ऐसे स्थान में थे जहां मसीही आचरण कठिन था। प्रभु यीशु हमारी परिस्थितियों को भी देखता है। कभी कभी हम किसी परिस्थितियों के मारे को दोष देते हैं, परंतु यदि हम उसके स्थान में हों तो शायद उससे भी बुरे होंगे। लिखा है, जहां शैतान का शैतान सिंहासन है। देखिए, पिरगमोन में धर्म का बड़ा बोलबाला था और वहां शैतान का राज था। यहां स्पष्ट है कि शैतान नरक में नहीं रहता है। वह नरक में नहीं है क्योंकि नरक अभी खोला नहीं गया है। शैतान बहुत समय तक नरक में नहीं डाला जाएगा, जैसा हम अध्याय 20 में देखेंगे। इस समय शैतान स्वतंत्र घूम रहा है। वह इस संसार का राजकुमार है और गरजते सिंह के समान पृथ्वी पर घूम रहा है। वह सब राज्यों को अपने वश में रखता है। 1 पत्रस 5 अध्याय के 8 पद में पत्रस कहता है कि वह खोज रहा है कि किसे फाड़ खाए। उसका भी मुख्यालय है। प्रभु यीशु कहता है कि पिरगमोन शैतान का सिंहासन है। मेरे विचार में उसके बाद उसने अनेक स्थानों में अपना सिंहासन तैयार किया है। उसका सिंहासन पिरगमोन में होने का एक कारण यह भी था कि वहां अनेक मंदिर थे जो आज खंडहर हैं। वहां आज पुनर्निर्माण का काम किया जा रहा है, परंतु यूहन्ना के युग में प्रभु यीशु कहता है कि वह स्थान शैतान का सिंहासन था। वहां के नगर द्वार में प्रवेश करते ही आपके दाहिने ओर एथेना का मंदिर है, उसके ठीक ऊपर पुस्तकालय है। वहां केसर अगस्तुस और हद्रियान के मंदिरों का विशाल क्षेत्र है। राजा के महल के पास जीएस की मूर्ति एक वेदी पर रखी है। कुछ लोगों के विचार में उसी वेदी को शैतान का सिंहासन कहा गया है। मेरे विचार में भी यही है, परंतु शैतान के सिंहासन से अभिप्राय है वहां के सब पूजा स्थल। वहां 2 स्थान विशेष हैं। एक है डायोनिसियस का मंदिर जो एक स्टेडियम के खंडहर के साथ था, और मेरे मित्र ने मुझे बताया कि मंदिर के खंडहर के चित्र लिए तो उसे पूछा गया कि उसने क्यों ऐसा किया। डायोनिसियस और बेकस एक ही हैं, वह मदिरा का देवता है। उसका ऊपरी भाग मनुष्य का सा है और निचला भाग बकरी के समान है, परंतु सिर पर सिंह है। आज शैतान के विषय में ऐसी ही कल्पना की जाती है, जबकि बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं है। यह विचार इसी देवता से उभरा है। शैतान भी मदिरा का देवता है। मदिरा के कारण अनेक राज्य डूबे हैं। मेरे प्रियो, पिरगमोन का दूसरा बड़ा मंदिर अस्केलेपियोस का था। उस पर्वत के नीचे उस युग का एक महान औषधालय था जो पहले मंदिर था। यूनानी अस्केपियोस मनुष्य स्वरूप देवता था, परंतु अनातोलियन या प्राचीन देवता सांप था। वह मंदिर गोलाकार था और उपचार के लिए वे हर प्रकार की विधि काम में लेते थे, औषधि, मनोविज्ञान और अन्य सब कुछ। मेरे मित्रों, उपचार के लिए आपको सुरंगों में से होकर चलना पड़ता था, जिनमें हवा के लिए छिद्र बने हुए थे, परंतु हवा आती नहीं थी। वहां तरह तरह की आवाजें आपस में कहती थी कि आप रोग मुक्त हो जाएंगे। यह आज के उपचार जैसा नहीं प्रतीत होता है। गर्म जल का स्थान और मालिश भी की जाती थी। वहां एक छोटा सा रंगमंच भी था जिसमें रोग मुक्ति के नाटक किए जाते थे। यदि इन सब विधियों से आपको लाभ नहीं होता तो आपको रात के समय मंदिर में विष रहित सांपों के बीच में लेटाया जाता था कि आप पर लौटें। आज शॉक ट्रीटमेंट कहते हैं। यदि आपको रोग मुक्ति नहीं मिली तो वे आपको निश्चय ही पागल बना देंगे। वहां एक पिछला द्वार था जहां से मृतकों को बाहर ले जाया जाता था। वे केवल उन्हीं का उल्लेख करते थे जो चंगाई पाते थे, असाध्य रोगियों का नहीं। केसर अगस्तुस को वहां जाना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए नहीं कि वह बीमार हो जाता था, परंतु इसलिए कि वह शराबी था। 700 वर्षों तक वह मंदिर एक अस्पताल था जहां संपूर्ण विश्व से रोगी आते थे। इसमें संदेह नहीं कि वहां औषधि काम में लेने वाले अच्छे चिकित्सक भी थे, परंतु वह स्थान वास्तव में शैतान का सिंहासन था। यह एक ध्यान देने योग्य बात है। उसकी सराहना में दूसरा वचन, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। वे प्रभु यीशु को परमेश्वर मानते थे। जैसा हमने देखा है, पिरगमोन की कलिसिया 314 से लगभग 590 तक कलिसियाओं का प्रतिनिधि रही है। उस युग में विश्वास के महान नायक उत्पन्न हुए हैं। जब प्रभु यीशु के परमेश्वर न होने की झूठी शिक्षा का बोलबाला था, तब उत्तरी अफ्रीका के अथनियास ने विश्वास की रक्षा की और सन 325 में नाइसिया की सभा में एरियन शिक्षा को झूठा ठहराया गया। दूसरा संत अगस्तीन था जिसने आदि पाप का खंडन करने वाली और मनुष्य के स्वभाव को पूर्ण भ्रष्ट करने तथा अनुग्रह का इनकार करने वाली झूठी शिक्षा के विरुद्ध विश्वास की रक्षा की थी। विश्वास के लिए खड़े होने वाले उस युग में ये दो महान नायक थे। आगे लिखा है, मुझ पर विश्वास करने में भी पीछे नहीं हटा। मसीही अनुयायियों की सच्ची शिक्षा को मानना, मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। वह शायद पिरगमोन का पहला विश्वासी था। उसके बाद वहां अनेक शहीद हुए हैं। तब तक तो प्रभु यीशु पिरगमोन की प्रशंसा कर रहा था, परंतु अब उन पर वह दो दोष लगाता है। आइए हम पढ़ें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय उसके 14 और 15 पद में। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और वे विचार करें। वैसे ही तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं। विलाम की शिक्षा और बिलाम की शिक्षा में अंतर है। यहूदा 11 पद में आप देखते हैं, बिलाम की शिक्षा थी कि इसराइल पाप करने पर विवश किए जाए तो परमेश्वर स्वयं उन्हें दंड देगा। यह बिलाम के मार्ग से भी भिन्न है। दूसरा पत्रस 2:15 में लिखा है, बिलाम का मार्ग लालच करना था। बिलाम ने बालाक को सिखाया कि वह इसराइल के पुरुषों के साथ मुआबी स्त्रियों का विवाह करवा दे, जिससे कि उनमें मूर्ति पूजा प्रवेश कर जाएगी और वे व्यभिचार भी करने लगेंगे। इतिहास के जिस युग में पिरगमुन की कलिसिया थी, उस समय अविश्वासी भी आराधना में आते थे। तब आगे कहता है, निकुलियों की शिक्षा। हमने देखा था कि इफिसुस की कलिसिया इन शिक्षकों से घृणा करती थी, परंतु पिरगमुन की कलिसिया के कुछ सदस्य उन शिक्षाओं को मानते थे। यद्यपि हम इस शिक्षा के विषय में नहीं जानते, वह शायद तत्वज्ञान से संबंधित शिक्षा थी जिसका चलाने वाला निकोलाउस था। वे मसीही आचरण में व्यभिचार को स्थान देते थे और शायद याजकों द्वारा अनुष्ठानों की पूर्ति को मानते थे। वे सब विश्वासियों के याजक होने को स्वीकार नहीं करते थे। प्रभु यीशु कहता है कि वह इससे घृणा करता है। देखिए, प्रभु यीशु प्रेम करता है तो घृणा भी करता है। अतः सावधान कि हम उन बातों में ना पड़े जिनसे प्रभु यीशु घृणा करता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2:16 में लिखा है, अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। कहता है मन फिरा। दूसरे शब्दों में एक मात्र उपचार है मन फिराव का। पहला योहन्ना की पत्र 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि वे मन फिराएं तो प्रभु यीशु कहता है कि वह अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ेगा। उसके मुख की तलवार उसका वचन है। यह हमारी कैसी महान भूल है कि हम सोचते हैं कि कलीसिया को सही और गलत का निर्णय लेने का अधिकार है। सच्ची कलीसिया मसीह यीशु के विश्वासियों का समुदाय है, जिसे धर्मशास्त्र में मसीह की देह कहा गया है। उन्हें इस जगत की ज्योति होना है और इसके लिए आवश्यक है कि प्रभु यीशु से एकता बनाई जाए तथा परमेश्वर के वचन को अधिकार माना जाए। प्रकाशित वाक्य 2:17 में लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। कहता है जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यह आज आपके और मेरे लिए है। जो जय पाए, यह एक सच्चे मसीही जन की परिभाषा है। हम मेमने के लहू से जय पाते हैं। स्वयं विजयी नहीं है, हम जानते हैं कि विजय प्रभु यीशु की है, हमारी नहीं। तब वह कहता है गुप्त मन्ना, परमेश्वर के वचन में व्यक्त प्रभु यीशु और उसकी मृत्यु। यीशु ने स्वयं कहा था कि वह रोटी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:32-35 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। मेरे प्रियो, विश्वासी के आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है कि वह प्रभु यीशु में पोषित हो। आज प्रभु यीशु को न तो पहचाना जाता है और न ही उसका ज्ञान ग्रहण किया जाता है। लोग उसे कैसे गलत समझते हैं और समझाते हैं। आगे कहता है, उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर का एक नाम लिखा है, जी हाँ, जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नाम नहीं पढ़ पाएगा या नहीं जानेगा। श्वेत पत्थर का अर्थ है कि विश्वासी स्वर्ग में कलंकित ना होंगे। किसी ने कहा है, श्वेत रंग हर जगह स्वर्ग का रंग और पोशाक है। इसका अर्थ निश्चित करना तो कठिन है, परंतु यहुन्ना ने कहा है, एशिया माइनर के लोग अपने घनिष्ठ मित्रों को श्वेत पत्थर या हाथी दांत का एक श्वेत घनाकार पिंड देते थे जिस पर कुछ लिखा होता था या चिन्ह बने होते थे। यह एक गुप्त भेंट और व्यक्तिगत संपदा होती थी। प्रभु यीशु कहता है कि वह प्रत्येक विश्वासी को एक पत्थर देगा जिस पर कुछ लिखा होगा, वह उसका नया नाम होगा। मेरा मानना है कि हर एक पर एक अलग नाम लिखा होगा क्योंकि वह हम सब के लिए अलग अलग अर्थ रखता है। वह नाम हमारे लिए व्यक्तिगत और मार्मिक होगा। मेरे प्रियो, आगे वह कहता है, थुआतीरा की कलीसिया को प्रभु यीशु का पत्र है। थुआतीरा की कलीसिया रोमी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है जो अंधकार के युग 590 से 1000 के समय की चर्चा है। पिर्गमोन से भीतर की ओर चलने पर थुआतीरा और अन्य तीन कलीसियाएं हैं। थुआतीरा और तीनों कलीसियाएं भीतरी भाग में हैं। वह एक अत्यंत रमणीय स्थान है। इतिहासकार सर विलियम राम से उसके लिए लिखते हैं, थुआतीरा एक लंबे दर्रे के मुख पर स्थित है जो हरमास और काइकोस को जोड़ता हुआ उत्तर और दक्षिण की ओर जाता है। उस दर्रे के आगे एक झरना दक्षिण में बहता है और हरमस की मुख्य सहायक नदी लाइकस में समाप्त होता है, जबकि उसका उत्तरी छोर काइकोस तराई के एक छोटे से उभार द्वारा विभाजित होता है। इन दो नदियों हरमस और काइकोस की तराइयां पूर्व और पश्चिम में अनातोलिया के मध्यवर्ती पठारों के सिरे से एजियन सागर में खुलती हैं। प्रकृति ने इस सुगम मार्ग को सब सभ्यताओं के युगों में एक से दूसरी घाटी के मध्य स्थापित किया है जहां आज रेल व्यवस्था है, परंतु पूर्व काल में वह एशिया माइनर का मुख्य मार्ग था। मेरे प्रियो, थुआतीरा इसी दर्रे में स्थित था। वह नगर गढ़ वाला नगर था। उस युग में सुरक्षा के लिए पर्वतों पर गढ़ वाले नगर बनाए जाते थे और उनके चारों ओर दीवार उठाई जाती थी, परंतु थुआतीरा पर्वत की अपेक्षा मात्र एक उभरे हुए स्थान में बसा था। उसका बल रोमी राजसी सैनिक थे। थुआतीरा का निर्माण लिसीमेखस और फिर सेल्यूकस द्वारा किया गया था, जिसका राज्य हरमास की तराई से हिमालय पर्वत तक था, परंतु वह अंत में बैरियों के अधिकार में आ गया था। उस क्षेत्र में थुआतीरा जैसा कोई दूसरा नगर नहीं था जो पूरी तरह ध्वंस होने के बाद फिर बसा हो। आज थुआतीरा का भ्रमण करना बड़ा निराशजनक है क्योंकि वहां बहुत ही कम खंडहर दिखाई देते हैं। मेरे मित्रों, रोमी सम्राट वेस्पोलिसियन के युग में थुआतीरा बहुत समृद्ध हो गया था। वह प्राचीन व्यवसायी संघों का मुख्यालय था। कुम्हार, चमड़ा रंगने वाले, जुलाहे, बागा बनाने वाले, रंगरेज आदि, मेरे विचार में मजदूर संघ का विकास वहीं से हुआ है। यूरोप में पौलुस के प्रथम मसीही अनुयायी फिलिपी की लुदिया यहीं की रहने वाली थी, जिसे हम प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 14 पद में पाते हैं। बैजनी वस्त्र वहां के पौधों से लिए गए रंग से रंगे जाते थे। सूर्य देवता अपोलो वहां का देवता था। आइए हम आगे देखते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय के 18 पद में लिखा है, थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह यह कहता है। परमेश्वर का पुत्र न्याय करने की मुद्रा में प्रकट किया गया है, आंखें आग की ज्वाला के समान अर्थात उनकी खोज में, पांव उत्तम पीतल के समान अर्थात दंड देने को तत्पर है। प्रभु यीशु उस कलीसिया को दंड देने जा रहा है, परंतु उनकी प्रशंसा भी करता है। यदि आप सोचते हैं कि अंधकार के युग में रोमी कलीसिया दंड के योग्य है, तो आप उसका इतिहास देखें। प्रभु यीशु कहता है, प्रकाशित वाक्य 2 उसके 19 पद में, मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। अंधकार के युग की कलीसिया के लिए प्रभु यीशु प्रशंसा की 6 बातें कहता है, क्योंकि उसमें प्रभु यीशु के प्रेम करने वाले विश्वासी भी थे जिनका प्रेम कर्मों से प्रकट था। याकूब के पत्र 2 अध्याय के 18 पद में लिखा है, तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। मेरे मित्रों, प्रशंसा योग्य उनके 6 गुण थे। पहला, तेरे कामों, सच्चे विश्वासियों का प्रमाण। वहां अनेक विश्वासियों का जीवन निष्कलंक था और अपने कर्मों द्वारा वे मसीही शिक्षाओं को सिद्ध करते थे। दूसरा, तेरे प्रेम, यद्यपि वह कलीसिया प्रथाओं में फंस गई थी, उनमें आपसी प्रेम था। उस युग में अनेक महान संत थे, किलेखाकस का बर्नार्ड, पीटर वाल्डो, जॉन वैक्लिफ, जॉन हस, सावनारोला, आंसेलम, ये सब रोमी कलीसिया में ही थे। और तीसरी बात वह कहता है, विश्वास। यद्यपि यहां विश्वास का उल्लेख कामों और प्रेम के बाद आता है, कामों और प्रेम का उद्गम विश्वास ही से है। चौथी बात है सेवा, अर्थात सेवा करना। पांचवी बात, धीरज, अंधकार के युग में सहनशीलता। और छठवीं बात, तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। इस कलीसिया में भले काम बढ़ गए थे, कम नहीं हुए थे। ये 6 गुण विश्वासियों में पवित्र आत्मा द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब उनका एक भयंकर दोष है। प्रकाशित वाक्य 2 उसके 20 में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। मेरे प्रियो, इजेबेल उत्तरी राज्य इसराइल की रानी थी जिसने इसराइल में बाल देवता की पूजा आरंभ करवा दी थी। स्पष्ट है कि थुआथिरा की कलीसिया में एक शिक्षिका थी जो इजेबेल का दूसरा रूप थी। वहां अन्य जाति अभ्यास एवं मूर्ति पूजा प्रवेश कर गई थी। ग्रेगरी प्रथम पोप ने अपना पद 590 में सांसारिक शक्ति बना दिया था और बाद में ग्रेगरी सप्तम ने भी वैसा ही किया, जिसे हम 1073 से 1085 में देखते हैं। प्रभु यीशु में विश्वास कलीसिया की शिक्षाओं और प्रथाओं के नीचे दब गया था। मरियम और शिशु की उपासना तथा युखारिस्त कलीसिया का आवश्यक अंश हो गया था। मरणोपरांत आत्मा छोटे पापों का दंड पाकर उद्धार पाएगी। वे मृतकों को भी प्रभु भोज देते थे। पोप को अधिकार और सत्ता प्रदान करने के लिए झूठे दस्तावेज प्रचलन में थे, जैसे कॉन्स्टेंटाइन के लिए भेंट पत्र और डिक्रेटलस ऑफ इसेडोर आदि। जिस प्रकार इजेबेल ने नाबोत की हत्या करवाई और परमेश्वर के भविष्य वक्ताओं को सताया था, उसी प्रकार रोमी कलीसिया ने भी जांच पड़ताल का नियम बना दिया था। लिखा है भरमाती है, अर्थात विश्वास से दूर ले जाती है। इजेबेल थुआथिरा वासी लुदिया के सर्वथा विपरीत थी। अध्याय 17 में हम देखेंगे कि इजेबेल विधर्मी कलीसिया की अग्रणी है। आइए हम पढ़ें प्रकाशित वाक्य 2 उसके 21 में लिखा है, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। प्रभु यीशु ने इस अनुचित प्रथा को 1000 वर्ष से अधिक सहन किया, परंतु उसमें आज तक कोई सुधार नहीं आया है। रोम तो दावा करता है कि वह बदलना नहीं चाहता। प्रकाशित वाक्य 2 के 22 में लिखा है, देख मैं उसे रोग शैया पर डालता हूं और जो उसके साथ वे विचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। बड़े क्लेश अर्थात समाजवाद के कारण रोम में सताओ या विधर्मी कलीसिया का महाक्लेश में होना। कहता है उसके से काम अर्थात विधर्म के काम। प्रकाशित वाक्य 2 के 23 में लिखा है, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा, कहता है उसके बच्चों, धार्मिक परंपराओं में बढ़ने वाले मसीही जन। उसके बच्चों को मार डालूंगा अर्थात दूसरी मृत्यु। सब कलीसियाएं अर्थात सब युगों की कलीसियाएं, हृदय और मन अर्थात विचार, भावनाएं और उद्देश्य, वह हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को परखता है। प्रकाशित वाक्य 2:24 में लिखा है, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा। थुआतीरा की कलीसिया शीघ्र ही समाप्त हो गई क्योंकि बैरियों ने थुआतीरा को ध्वंस कर दिया था। लिखा है, शैतान की गहरी बातें, शैतान की उपासना करने वाले तत्व ज्ञान के अनुयायी, वे पौलुस की नकल करते थे। वे जो कर रहे थे वह था अधिक उत्तम आत्मिक अनुभूति। प्रकाशित वाक्य 2:25 में लिखा है, पर हां जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। प्रभु यीशु उनसे कहता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं, अतः विश्वास में बने रहो, स्थिर रहो। प्रकाशित वाक्य 2:26 में लिखा है, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। प्रभु यीशु के कार्य इजेबेल के विपरीत हैं। वे आत्मा द्वारा उत्पन्न कार्य हैं। हम कार्यों से नहीं विश्वास से जय पाते हैं। प्रकाशित वाक्य 2:27 में लिखा है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, कहता है। यह प्रभु यीशु का 1000 वर्षीय राज है जिसमें विश्वासी सहभागी होंगे। तब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 2:28 में, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। प्रभु यीशु भोर का चमकता हुआ तारा है। प्रकाशित वाक्य 22:16 में भी देखते हैं, प्रभु यीशु द्वारा कलीसिया का उठाया जाना विश्वासियों की आशा है। प्रकाशित वाक्य 2:29 में लिखा है, जो इस अध्याय का अंतिम पद है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इजेबेल की संतान नहीं सुनेगी, परंतु प्रभु यीशु की संतान अवश्य सुनेगी, क्योंकि पवित्र आत्मा कान खोल देता है। जी हाँ, यदि आज आप परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं तो यह इसलिए क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके कानों को खोल देता है। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
मुझको मसीह के आने का अब इंतजार है, मुझको मसीह के आने का अब इंतजार है। ख्वाबों ख्यालों वो दिल के पास है, ख्यालों वो दिल के पास है। मुझको मसीह के आने का अब इंतजार।